मेरा एक बहन है जो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए टेबल पर रखी हुई चीजों को हिलाती है, एक टेबल से दूसरी टेबल पर या टेबल पर घुमाना चाहे तो घुमाती है। पेपर वेट, वहां पैड रखा हो, पैड, कागज, पिन, उसको पता नहीं है उसकी ये क्या शक्ति है और ये कैसा बनता है। इसकी खोज हुई और बहुत साइंटिफिकली खोज हुई और नतीजा ये निकला कि उस बहन के व्यक्तित्व में ऐसी एक शक्ति है कि वो सारे अपने व्यक्तित्व की जितनी विल पावर है वो इकट्ठा कर सकती है, कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, और वो कॉन्सेंट्रेटेड विल पावर के आधार पर वो चीजों को हिला सकती है। एक कदम साइंटिस्टों ने आगे रखा और ये खोज चलाई कि क्या इस प्रकार की विल पावर हर एक को हासिल हो सकती है, और अगर हर एक को हासिल हो सकती है तो क्या पूरे नेशन को हासिल हो सकती है, और पूरे नेशन को अगर हासिल हो सकती हो किसी एक अवधि के बाद में स्टेज में, तो क्या वो विल पावर छोटी चीजों के नहीं लेकिन बड़ी बड़ी कामों, बड़े बड़े कामों को भी करा पाएगी, क्या ये संभवनीय है? रशिया में और दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों में इसकी एक खोज चल रही है। मैं सोचता रहा ये पढ़ने के बाद में कि क्या इस देश में भी कोई ऐसी व्हील पावर बन सकती है। क्षण भर के लिए पूरे देश की बात को थोड़ा आप किनारे रख दीजिए, लेकिन क्या यूथ में और स्टूडेंट्स में ऐसी कोई व्हील पावर बन सकती है? और अगर ये व्हील पावर बन सकती है तो फिर आगे के कदम आप चार्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको उठाने नहीं पड़ेंगे। शिक्षा में परिवर्तन हो इसके लिए इस देश में कितने अरसे से ये मांग होती आई है, परिवर्तन चाहिए, लेकिन क्या उस बहन के व्यक्तित्व में जिस प्रकार की एक विल पावर इकट्ठा होती है, ऐसी शिक्षा में परिवर्तन के लिए इस देश के समाज में विल पावर पैदा हुई है? जो शिक्षा ले रहे हैं उनमें ये विल पावर हो रही है? मैं सिर्फ दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की विल पावर अगर विद्यार्थी जगत में, तरुणों में, युवकों में पैदा हो सकती है तो शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए कुछ कदम युवकों को नहीं उठाने पड़ेंगे, जो उसके जानकार है वो उठा सकेंगे। अपने देश में नहीं लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों में युवकों के विल पावर से क्या होता है इसके नमूने अभी अभी 10 साल के भीतर भीतर पेश हुए हैं। 67 के 22 मार्च को करीब 25 विद्यार्थियों ने पेरिस से 18 मील दूर की अत्यंत आधुनिक यूनिवर्सिटी का कब्जा ले लिया। वो 23वें माले तक चढ़े और जब चढ़ रहे थे तो हर माले का दरवाजा बंद कर लेते थे। सारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का उन्होंने कब्जा लिया और करीब करीब 7 दिन वो 23 व्यक्ति विद्यार्थी थे, कुछ भाई कुछ बहने, वहां रहे और फ्रांस के उस वक्त के सबसे ऊंचे दर्जे के जो तत्वज्ञ थे, फिलोसोफर, उन्होंने कहा कि उन 7 दिनों में इन 23 विद्यार्थियों ने जो लिखा है पूरे साल भर में फ्रांस के सब विचारकों ने नहीं लिखा, वॉल्यूम में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, गहराई में, क्योंकि वो तो अपने जान से खेल रहे थे। कॉन्सेंट्रेटेड विल पावर से उन विद्यार्थियों ने जो लिखा वो फ्रांस जैसे राष्ट्र के विचारकों को विचार करने के लिए लगाने लायक लिखा, कोई ज्ञान से नहीं, ये विल पावर से। इस प्रकार की विल पावर कैसे और कहां से पैदा होगी एक काम के लिए, सिर्फ काम कई है लेकिन शिक्षा में परिवर्तन के लिए ये विल पावर कहां से पैदा होगी। पीपल्स कमेटी का काम मैं भी करता हूं और राष्ट्रीय स्तर पर ये पीपल्स कमेटी का, जयप्रकाश जी का विचार कैसे कार्यान्वित हो सोचते भी रहते हैं हम लोग। ऐसा दिखाई देता है कि एकाएक न तो स्ट्रगल होगा ना आपने अनुभव किया होगा और उन्होंने अनुभव किया है, एकाएक न तो एजिटेशन भी हो सकता है। और इस देश की हालत ऐसी हुई है कि बिना एजिटेशन के, बिना स्ट्रगल के कोई समस्या हल होगी नहीं। वर्षों पहले की बात है, जब मैं भी विद्यार्थी था तो एक कारपोरेशन का पहली पहल नागपुर शहर में जब फर्स्ट मेयर बना, पहला मेयर, तो उसके स्वागत समारोह में विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के नाते मुझे भी बोलना पड़ा था। बड़े बड़े शहर के विद्वान भी बोल रहे थे, थोड़ा संकोच भी मेरे मन में था कि मैं क्या बोलूंगा। वक्त पे सूझा मुझे इतना ही, मैंने कहा कि ये मेयर साहब से एक ही प्रार्थना है कि इस नागपुर शहर में कोई मक्खी न रहे, ऐसा इंतजाम करें। अब हम लोग तो हंसते हैं, मक्खी मारना कोई काम है पराक्रम का, पुरुषार्थ का काम तो नहीं है। बाद में मैंने पढ़ा कि माओ का शासन आने के बाद में चीन में मक्खियों का निराकरण किया गया काफी बड़ी मात्रा में। फिर वो मेयर साहब ने मुझसे कहा कि जितनी बधाइयां दी गई वो तो सब मैंने स्वीकार की, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार की। कहा मुझे तो लगा कि बहुत मामूली सी प्रार्थना मैंने की थी। कहा नहीं, अगर मक्खियां नागपुर शहर की हटानी हो तो नागपुर शहर के हर नागरिक की केवल लिविंग स्टाइल नहीं, उसकी आदत को बदलना पड़ेगा। अब पूरे आबादी की आदत बदलना, और कितनी भिन्न भिन्न आदतें हैं, काफी मुश्किल काम है। उन्होंने कहा भी इसके लिए रेवोल्यूशन होगा तब होगा, यानी मक्खियां भी मारनी हो तो रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा, और मुझे लगता है टोटल रेवोल्यूशन करना पड़ेगा वरना नहीं होगा। अब ये शिक्षा में क्रांति तो कई बड़ा विषय है, इसमें अगर आप परिवर्तन या क्रांति चाहते हो तो सारे समाज के परिवर्तन के बिना ये होगा नहीं। और सारे समाज का परिवर्तन मामूली एक्टिविटीज से, मामूली कार्रवाइयों से, साधारण आंदोलनों से नहीं होगा। तो एक उसका सिलसिला बनाना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि आप स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया की एक बात को दोबारा सोच लीजिए। उन्होंने उनके मृत्यु के थोड़े पहले स्वर्गीय राजा जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने, जैसा उनका लिखने का ढंग था, लिखा था कि वो एक बूढ़ा था जिसके शरीर में बहुत शक्ति थी नहीं, एक जादूगर की तरह एक आंदोलन खड़ा करता था और लोग उसमें शामिल नहीं होते थे, केवल बह जाते थे, डूब जाते थे। मैं मानता हूं गांधी को उन्होंने लिखा था, और मैं हर साल नहीं, साल में 15 बार आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गांधी के आंदोलनों में लोगों को मत आइए कहना पड़ता था, मेरे आंदोलनों में दूसरा ही कहना पड़ता है कि आइए आइए, कोई नहीं आता है। राजा जी से उन्होंने इसलिए पूछा था कि राजा जी भी गांधी जी के साथ काम करते थे, कि क्या वजह है कि मेरे आंदोलनों में लोग नहीं आते। स्थानीय विषय मैंने लिया, लोगों के, आपने कुछ कहा ना कि कॉम्प्रेहेंसिव कुछ ऐसा विषय लेते हैं कि जिसको लेकर आंदोलन हो नहीं पाता, फेल्ट नीड्स वगैरह, कई कई नए शब्द आए हैं, उनको लेकर मैंने आंदोलन किया लेकिन आंदोलन नहीं हुआ। तो यह आंदोलन हुआ नहीं। लोहिया जैसे एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति, विचारक, उनके करने से भी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये खोजने का विषय है। लगता ऐसा है कि आंदोलन अपना एकाएक नहीं बनता है, ये कोई साइक्लोन थोड़ा ही है जो आंध्र में आया था, उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की जरूरत होती है। लगता है तीन बातें आवश्यक है। एक तो जैसे समाज में एक सोशल एक्टिविटी चलती है, उस प्रकार की एक्टिविटी आपको चलानी पड़ेगी शिक्षा में क्रांति के लिए। खोजिए इसको, कैसी एक्टिविटी का अर्थ क्या होता है, क्या साइज हो उसका इत्यादि। उसके बाद में, और वो जो कहा गया है सही कहा गया है, बार बार मैं सोचता हूं, आज सुबह एक मित्र से कह रहा था, सेक्रेटेरिएट में गया था, देखा कि टेबल खाली पड़े हैं। बाहर कॉरिडोर में देखा कि जिन लोगों के टेबल खाली पड़े हैं उनकी उम्र तो यूथ की उम्र है। तो मुझे लगा कि ये टेबल अगर यूथ अपना काम छोड़कर भाग जाता है तो क्या यही यूथ क्रांति करेगा। तो जेपी ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये दोनों का मेल मैं अपने मन में कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जेपी का ये मानना है कि उस राजा की तरह कि जो जिस चीज को हाथ लगाता था सोना बन जाता था, जेपी ये मानते हैं कि यूथ जिसमें शामिल होगा आंदोलन बन जाएगा। इस एक्टिविटी को अगर मूवमेंट में आपको परिणत करना है तो उसमें यूथ को जाना होगा, और यूथ जाएगा तो एक्टिविटी नहीं रहेगी, मूवमेंट होगी। अगर शिक्षा में क्रांति का मूवमेंट आपको बंबई में चलाना हो तो शिक्षा से संबंधित हर व्यक्ति का उसमें कम से कम जानकारी चाहिए, तब एक विन पैदा होगी। हर विद्यार्थी को माहिती मिलनी चाहिए, शिक्षकों को मिलनी चाहिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, और जो बालक है उनको भी इसमें शामिल कर लेना होगा जानकारी के लेवल पर। और उसका एक मूवमेंट धीमे धीमे, आज शुरू किया 15 दिन बाद दूसरी मीटिंग हुई, ऐसा नहीं दिन भर की मीटिंग चले जैसी वो 22 मार्च वालों के फ्रांस में चलती थी, तब उसका एक मूवमेंट का रूप होगा। और ये होने के बाद में एजिटेशन की स्टेज आती है, उसके पहले नहीं। और एजिटेशन में जो कंसर्न है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो शामिल होंगे, लेकिन सारे समाज को जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद अगर तब तक भी अगर ना हुआ तो फिर आप स्ट्रगल के लिए तैयार कीजिए, एक लड़ाई के लिए, और उसमें सारे समाज को इन्वॉल्व कीजिए। ये कभी संभव नहीं होगा कि आप एकदम स्ट्रगल का या एजिटेशन का कदम उठाएं और लोग उसमें शामिल होंगे, ये होगा नहीं। उसके पहले आपको एक्टिविटी और मूवमेंट चलानी पड़ेगी। मैं आपसे आह्वान इस बात का करना चाहता था कि इसे आप सोचें, और तब जाकर आपको ये दिखाई देगा कि फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होगी, इन 2-3 कदमों से ही एक विल पैदा होगी, जिस विल के कारण शिक्षा का ढांचा बदल सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपकी विद्यार्थी के नाते, यूथ के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर एक सिटीजन की है या नहीं, और वो अगर है तो आपकी क्या है। रीसेंट पास्ट की बात को मैं अभी लेता हूं, जिसके कारण मैं आज आपके सामने खड़ा हो सकता हूं, आप यहां इकट्ठा हो सकते हैं, 12 महीने पहले ये नहीं हो सकता था। इस स्थिति का परिवर्तन जिन्होंने किया है, और वो आपने मैंने नहीं किया है पूरी मात्रा में, उस आदमी ने किया जो जानता नहीं है, जो कभी बोलता नहीं है, जो कभी सुनता भी नहीं, भूखे पेट से बहुत सुन भी नहीं पाता है, उस आदमी के पास में ये जो सारा हुआ इसका कभी पूरा वर्णन हमने रखा है। क्या ये संभव है बंबई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए कि 100 गांवों का वो प्रोजेक्ट ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि उस गांव की सफाई का क्या होगा सोचिए, उस गांव के खेती का क्या होगा सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा काम कहना चाहता हूं जो दूसरी कोई एजेंसी इस देश में नहीं करने वाली है, नहीं कर रही है। रूरल डेवलपमेंट होगी, करने वाली एजेंसीज हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट होगी या नहीं, और कोई कर रहा है, मैं जहां तक देखता हूं नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 100 गांवों में हर एक नागरिक को उस गांव के, ये क्या होता है डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, वो बताइए। और आप जानते हैं इसलिए आप उसे शेयर कीजिए. ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर यूथ और विद्यार्थी यूनिवर्सिटी स्टेज के लेते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि इस देश में एक डेमोक्रेटिक विल भी पैदा होगी. वरना अगर ये ना होगी तो ये आप ध्यान में रखिए कि डेमोक्रेटिक विल के अभाव में डेमोक्रेसी भी इस देश की बहुत कमजोर रहेगी. और अगर कमजोर रहेगी तो किसी दिन भी टॉपल होगी. और उन्हीं राजनीतिक नेताओं के द्वारा, दलों के द्वारा टॉपल होगी जो एक दूसरे को टॉपल करने के गेम में हर वक्त लगे हुए रहते हैं. अनजाने हो जाएगा. इसलिए इन दो बातों की तरफ मैं सिर्फ आपका ध्यान खींचना चाहता था. एक कि आखिर स्ट्रगल के लिए तैयारी करने हो तो किस स्टेज से और कैसे की जाए, ठीक से इसका प्लानिंग हो सकता है, करना चाहिए. और दूसरा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इस देश की दूसरी कोई एजेंसी उठाने के लिए आज तैयार नहीं है और निकट भविष्य में तैयार होगी ऐसा दिखाई नहीं देता है. ये काम जयप्रकाश जी ने जब ये माना कि यूथ को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तब ये माना है कि उसे भी एक मूवमेंट के तौर पर आप चलाएंगे. 100 के 10,000 कब होंगे और 10,000 के लाख गांव कब होंगे पता भी नहीं लगेगा. इतनी शक्ति यूथ के पार्टिसिपेशन की होती है. ये जयप्रकाश जी का अनुभव भी है और मान्यता भी है. इन दो ही बातों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने यहां उपस्थित हुआ हूं. मैंने संचालकों से कहा था कि दादा जिस सभा में बोलते हैं उस सभा में ज्यादा व्यक्तियों के भाषण नहीं रखने चाहिए. और मेरा तो नहीं ही रखना चाहिए, क्योंकि जो बातें दादा को करनी है वो बातें मुझे सुननी है. धन्यवाद सबको.
like
color. जो बातें अभी आपसे कही गई वो बहुत महत्व की हैं और मैं स्वयं भी उनसे कुछ सीखा हूँ। तो मेरा साधारण तरीका यह है कि मुझसे पहले कुछ कहा जाता है उससे आगे की बात मैं कहता हूँ। उतनी बात तो कही गई है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। अब हम इस देश में और दुनिया में ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि या तो इस समाज की बुनियादों को बदलना होगा या फिर मानव समाज नष्ट होने वाला है हर क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में आज क्या स्थिति है कि स्वार्थों के संगठन बन गए हैं। ये संगठित स्वार्थ जब इनमें कुछ शक्ति आ जाती है तो ये दबाव के गुट बन जाते हैं, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। हर प्रेशर ग्रुप अपनी तरफ खींचता है। एक प्रेशर ग्रुप और एक तरफ खींचेगा, दूसरा प्रेशर ग्रुप दूसरी तरफ खींचेगा। इनमें से किसी को पूरे समाज के योगक्षेम का कोई विचार इनके किसी के मन में नहीं है, उनको फिक्र भी नहीं है। अब यह स्थिति आ रही है कि यह बहुत दिन चलने वाला नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह स्वरूप है कि इसमें हर मजदूर मालिक भी होता है। मैं अगर किसी के घर बर्तन मांजता हूं और बाहर निकलता हूं, बोझा मेरे पास ज्यादा है, तो एक कुली को खोजता हूं, तब मैं मालिक बन जाता हूं। कुली से कहता हूं कि तू कम से कम पैसे मुझसे ले। लेकिन जब मैं बर्तन मांजने जाता हूं तो मेरी मजदूरी जो खरीदता है उससे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे दे पैसे। यानी साइकोलॉजिकली मनोवृत्ति की दृष्टि से पूंजीवाद में सभी मजदूर मालिकों की मनोवृत्ति के हैं, लेकिन पूंजीवाद की दूसरी एक बड़ी बुनियाद है, वो है सौदा। सौदे का स्वरूप यह है कि वस्तु लेनी हो तो अधिक से अधिक लो, और उसके दाम देने हो तो कम से कम दो। अधिक से अधिक लेना, कम से कम देना, यह है सौदे का स्वरूप, और इसे ही बाजार नीति कहते हैं। पूंजीवाद में बाजार नीति मुख्य है। पुजारी अगर नौकर हो, जैसे कि आज है मंदिरों में, तो वो क्या करेगा? कम से कम पूजा और ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा। यानी ईश्वर की पूजा में भी जब सौदा आ जाएगा तो पूजा भी वो कम से कम करेगा। उसको मैं दक्षिणा देता हूं कि एक लघु रुद्र आप कर दीजिए और चला जाता हूं, तो वह लघु रुद्र जितने कम समय में कर सकता है उतने कम समय में करेगा, क्योंकि दूसरा लघु रुद्र भी उसे करना है, और अधिक से अधिक कमाई करेगा। ये पूंजीवाद की नीति खादी में प्रवेश न करे, ये इसका मंशा था आरंभ में। इसी का नाम बाजार है। खादी में बाजार न आए, इसका मतलब ये था कि सौदा खादी में नहीं आएगा। कुछ प्रतीक हैं आज भी, लेकिन वहां भी व्यापार घुस गया है। फिर भी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो भाव नहीं करते। उसको आपने 15 पैसे के हिसाब से 3 रुपए दे दिए, वो 20 कार्ड आपको दे देता है। रेल का टिकट खरीदने जाते हैं तो आप भाव नहीं करते। यानी कोई एक मानदंड हमने जो पैमाने आज बाजार में पाए, क्या उससे कोई अलग पैमाने खादी में आएंगे? यह सवाल था। नहीं तो इसका कोई स्थान ही नहीं था। यह गांधी के राम राज्य की प्रक्रिया में इसका स्थान था। लोगों को काम देना था, लेकिन काम किस लिए देना था? जैसे मंदिर में पुजारी को काम तो देना है, लेकिन काम किस लिए देना है? कि भगवान की भक्ति बढ़े, पूजा हो। लेकिन पुजारी के मन में बाजार आ गया, सौदा आ गया, तो एक दिन आएगा, और बहुत जल्दी आ रहा है, जब पुजारियों की भी हड़ताल होगी। ये चीज खादी में आ गई है। अब तो मेढक को भी जुकाम होने लगा। ये क्यों आई? कि खादी जिस उद्देश्य से शुरू हुई थी वो उद्देश्य आंख से ओझल हो गया, और खादी केवल लोगों को काम देने के लिए है, इतना ही हमारे सामने रह गया। कम से कम मैं आज जो खादी पहनता हूं वो केवल इसलिए पहनता हूं कि कुछ गरीबों को काम मिलता है। इसमें इससे अधिक कोई संकेत इसमें अब नहीं रह गया। खादी की दुकानों पर किसी का विश्वास नहीं रह गया जो पहले था। कश्मीर में हम जाते थे तो लोग हमसे कहते थे कि असली केसर चाहिए तो खादी की दुकान में जाओ। दूसरी बार जब गया तो खादी की दुकान के मैनेजर ने कहा कि अब हमारा काम इतना फैल गया है कि हम कोई विश्वास आपको नहीं दिला सकते। अब वो विश्वास तेल में भी नहीं दिला सकता, खादी में भी नहीं दिला सकता है कि इस खादी में कोई ऐसा मिल का सूत नहीं होगा, इसका भरोसा हमको वो नहीं दिला सकता है। यानी खादी में जो विश्वास पात्रता थी वो निकल गई। खादी का व्यापार बढ़ता होगा, वो पहले महायुद्ध में अकबर ने लिखा था, कवि अकबर ने, कि कदम जनवन का बढ़ता है फतह सरकार की होती। जर्मनी आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन विजय तो अंग्रेजों की हो रही है, वो हाल आज खादी का है। खादी का व्यापार बढ़ रहा है लेकिन खादी में जो संकेत था वो समाप्त हो रहा है। इसके जो कारण मैं देखता हूं उनको पहले रखूंगा और बाद में खादी की अर्थनीति क्या होगी आपके सामने रखूंगा। वो जैसे भगवान नाम का संकीर्तन मनुष्य करता है और माया ब्रह्म का विवेचन करता है, वैसा आजकल मुझे करना पड़ता है, लेकिन इसकी आज आवश्यकता है। अगर यह नहीं होगा तो अब कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्त्रियों की सभा में मैंने कहा था कि स्त्री अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि या तो वो पुरुष से आगे बढ़ेगी बराबरी पर नहीं, या फिर से चूल्हा चक्की की तरफ वापस जाएगी। इस मुकाम पर अब वो पहुंच गई है। ऐसे ही इस मुकाम पर अब हमारी अर्थनीति पहुंच गई है कि खादी या तो दूसरे कपड़े जैसी हो जाएगी या फिर उसको अब अपने सारे मूल्य बदलने होंगे। आज जो खादी का व्यापार हो रहा है इसमें तीन तरह के लोग हैं। कुछ तो हैं जो व्यवस्थापक हैं, दूसरे बाबू लोग हैं और तीसरे कातने वाले हैं। इनमें जागृत हैं और थोड़ी बहुत शक्ति है समाज को परेशान करने की, वो बाबू लोगों में है। उन लोगों में है ही नहीं जो खादी का सूत पैदा करते हैं। असल में अधिक से अधिक लाभ उनका होना चाहिए लेकिन उनके लाभ की किसी को चिंता बहुत है नहीं। उल्टे मैंने यह देखा है कि उनको भी खादी के वजन के मामले में, सूत के नंबर के मामले में बाबू धोखा देता है। यानी जो दूसरे दफ्तरों में और दुकानों में होता है, वो जो बिचौनिया है मिडिल मैन, ये खादी की दुकानों में भी है। अब इन सब के स्वार्थ अलग अलग हैं। यहाँ के एम्पोरियम में ही नहीं, सब जगह की खादी भंडारों में अनेक जगह मैंने ये देखा है कि वो जो कार्यकर्ता आते हैं वो दुकान में सिर्फ खादी की पोशाक पहनते हैं और दुकान से बाहर आते ही दूसरी पोशाक बदल लेते हैं। इसका मतलब ये है ना कि वो आया था इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए। बेकारी बहुत है इस देश में, तो नास्तिक भी मंदिर में पुजारी बन जाता है, क्योंकि उसको और कहीं जगह नहीं है उसके लिए। तो मंदिर में जाकर पुजारी बन जाएगा। अब ऐसे बाबुओं की ये खादी बनी हुई है, इसलिए इसमें ट्रेड यूनियनिज्म आ गया, और ट्रेड यूनियनिज्म को किसी चीज से परहेज नहीं है। उसको सिर्फ अपने यूनियनिज्म से ही मतलब है। ट्रेड यूनियनिज्म इज ऑलवेज वन स्टेप बिहाइंड रिवॉल्यूशन। क्रांति ट्रेड यूनियनिज्म से कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो काम के घंटे कम करो दाम बढ़ाओ, सौदे का ये सूत्र ही है, कम से कम काम ज्यादा से ज्यादा दाम। और जो मैनेजर्स हैं वो क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम दाम। अब दोनों के मन में, मैंने एक भाषण में कहा था कि दोनों चोर हो गए हैं, एक दाम चोर दूसरा काम चोर। इनमें से साहू कोई नहीं रह गया है। यह मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, कितना बड़ा सांस्कृतिक ह्रास है इसको आप समझिए। वो समझते हैं कि इसमें एक दूसरे का नुकसान है। मित्रों, एक दूसरे का नुकसान नहीं है, दोनों का बहुत बड़ी हानि है, और वो सांस्कृतिक हानि है, मनुष्यता की हानि है। इस चीज को कभी समझ नहीं लिया गया। खादी को जो भूमिका भिन्न होनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी। इसका कारण जो मोहताज थे, बेकार थे, वो यहां आए, और जो मैनेजर्स हैं उनके अपने अलग अलग रोजगार हैं। जब तक केवल खादी सांकेतिक थी तब तक घनश्याम दास बिरला भी कांपता था, इसमें महत्व था। लेकिन अब केवल सांकेतिक नहीं रह सकती है, वो अर्थ रचना का प्रतीक होगी। तो जिसकी अपनी कपड़े की दुकान अलग चल रही है, वो केवल सूत काता और खादी पहनता है, इतने से खादी के नाम पर वो प्रतिष्ठित हो, ये भयानक अवस्था है। मैंने सुनाया था यहां मुंबई में 1921 में मैं आया कॉलेज छोड़कर, तो मेरा मित्र एक विल्सन कॉलेज में पढ़ता था, वो साथ हम लोग निकले घूमने चौपाटी पर, तो एक अड्डे पर एक आदमी शराब पी रहा था, खादी पहने हुए था। वो मेरा मित्र कहने लगा, देख तेरे खादी वालों से तो हम अच्छे हैं कि नहीं, ये तो खादी वाला शराब पी रहा है, हम कम से कम खादी वाले नहीं है तो शराब तो नहीं पीते हैं, इससे तो अच्छे हैं। मैं कहा, इतनी बात में तो तू अच्छा है कि तू शराब नहीं पी रहा है, लेकिन ये खादी वाला शराब नहीं पी रहा है, ये शराबी खादी वाला बन गया। शराब तो पहले से ही पी रहा था, लेकिन खादी अब क्यों पहनने लगा है, खादी में प्रतिष्ठा है। आज नौबत ये आ गई है कि जो खादी पहनता है वो धोखा धड़ी वाला समझा जाता है। गांधी के जमाने में खादी आजादी की वर्दी थी, खादी वाले को देखते ही पुलिस वाला चौकन्ना हो जाता था, आज उल्टी हालत हो गई है। अगर मालूम न हो कि यह कौन है तो लोग समझते हैं कि यह मिनिस्टर होगा, और मिनिस्टर होगा से मतलब 420 हो। खादी से यहां तक खादी क्यों आई, किसके कारण आई? खादी के मैनेजरों के कारण आई, खादी के बाबुओं के कारण आई, इन दोनों के कारण आई, और ये दोनों अगर इसमें अपनी जिम्मेवारी नहीं मानते हैं तो समाज को धोखा देते हैं। इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। पेट तो सबको है, लेकिन पेट के साथ साथ चारित्र भी है कि नहीं। परिवार की स्त्री मेरी मां भूखों मरेगी, लेकिन वेश्या का व्यवसाय तो नहीं करेगी ना। जब खादी का मैनेजर ये कहता है कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आता। जो एम्प्लॉई है उसके जीवन में अंतर पड़ता है। तो उसमें एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आ गई। मालिक और नौकर, मालिक और मजदूर का जो संबंध था वो खादी में भी आ गया, जो नहीं आना चाहिए था। यहां तो सभी मालिक सभी मजदूर, जितने मालिक उतने मजदूर। वो भूदान के जमाने में मैं एक कहानी सुनाया करता था कि एक राजा के 5 रानियां थी। बहुत संपन्न अब राजा ही था वो, उनके लिए उसने चांदी के झूले बनवा दिए, उसमें रेशम की रस्सियां लगा दी झूला झुलाने के लिए। लेकिन नौकरों से कहा कि झूला कोई झुलाना नहीं इनको। जब रानियां बैठ गई बनठन कर अपने अपने झूले में, सवाल यह हुआ कि झुलाए कौन। तो थोड़ी देर के लिए रुकी, बाद में तय किया कि हम एक दूसरे को झुलाएंगे। तो जितनी रानियां उतनी नौकरानियां, जितनी नौकरानियां उतनी रानियां, सभी रानियां सभी नौकरानियां। यह खादी के अर्थशास्त्र का प्रतीक है। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप नहीं रहेगी, लेकिन बाबुओं ने यह अपने तक ही माना है। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि सारे बाबुओं से कहा गया कि ठीक है ये खादी तुम संभालो, अब हमसे नहीं संभलती। तो क्या ये बाबू सारे उन कत्तिनों को शामिल करेंगे कि वो एम्प्लॉई रह जाएंगी? जो कातने वाला है वो मजदूर ही रहेगा। आज का जो बाबू है व्हाइट कॉलर, वो मालिक बनेगा, और ये मालिक उतना ही शोषण करेंगे जितना दूसरे दुकानदार कर रहे हैं। खादी में से मनुष्य की रिलेशनशिप बदले, ये सपना है। और क्या सपना है? कोई मालिक नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई तनख्वाह पाने वाला नहीं, कोई तनख्वाह देने वाला नहीं। यह हिम्मत मैं तो कारखानेदारों से भी कहता हूं जब ट्रस्टीशिप की बात करता हूं, लेकिन यहां तो खादी में ट्रस्टीशिप तो दूर रही, ऑनेस्ट कॉमर्स भी नहीं है, ईमानदारी का व्यापार भी नहीं रह गया है। इसका कारण हर एक की स्प्लिट पर्सनैलिटी है। पूंजीवादी मूल्य चाहता है और रोजगार खादी का करता है, जिसमें समाज परिवर्तन का संकेत था। खादी में मुख्य संकेत ही यह था कि समाज की अर्थ नीति बदलेगी। यह संकेत अब खादी में नहीं रह गया। दूसरा संकेत था अर्थनीति बदलेगी का अर्थ क्या है? मैं आखिर की बात कह रहा हूं। सारी क्रांति की अर्थशास्त्र की आखिरी की चीज क्या है? काम का दाम के साथ संबंध नहीं। काम का संबंध है उत्पादन के साथ, और मनुष्य की आवश्यकता का संबंध है उपभोग के साथ। ये समाजवाद है या कम्युनिज्म है, ये सब कुछ है, लेकिन ये ट्रेड यूनियनिज्म नहीं। काम का संबंध दाम के साथ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जैसा आज हो रहा है बहुत से मेरे परिवार के नजदीक के लोगों में, कि एक आदमी बीमार हो गया है और उसके उपचार का खर्च 1,00,000 रुपए आता है। अब वो तो उपचार के बिना मरेगा ही, वो दूसरा उसके लिए चारा क्या है? तो ये तो दाम हुए ना, उपचार के भी दाम हो गए। यानी जो दवा खरीद नहीं सकता, उसको मरने के सिवा कोई चारा नहीं है उसके लिए। तो ये जो वितरण परचेजिंग पावर बेसिस है, जितनी आपकी क्रय शक्ति होगी उतना आपको उपभोग मिलेगा, आसुरी अर्थनीति है। मैं जितना काम कर सकता हूं उतना काम करूंगा, ईमान से करूंगा, लेकिन मेरी बीमारी अगर ऐसी है कि उसको महंगी दवा की जरूरत है तो मेरा अधिकार है, वो मुझे मिलनी चाहिए। ये अंतिम चीज है जो मैं कह रहा हूं। अब तक कम्युनिस्ट देश भी यहां तक नहीं पहुंचे हैं, और हमारी सर्वोदय की संस्थाएं तो बहुत ही पीछे हैं, लेकिन अंतिम चीज यह है कि जितनी उसकी आवश्यकता है उतना उपभोग उसको मिलना चाहिए, और जितनी उसकी ताकत है उतना वो काम करे। क्या इस तरफ को खादी का मुंह है? खादी इस तरफ को क्या मुखातिब हो रही है? कीमत की तरफ से मूल्य की तरफ हमको जाना है। इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। खादीधारी भी इस मूल्य को समझे। वो खादी पहनता है, इसका उसके जीवन पर भी तो कोई परिणाम चाहिए। ये सिर्फ बड़े पैमाने पर उत्पादन हो या छोटे पैमाने पर उत्पादन हो, इतना सवाल नहीं है। इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि उत्पादन उपभोग के लिए ही नहीं, मनुष्य के लिए होगा। और मनुष्य के लिए से मतलब यह है कि वितरण में परचेज नहीं, परचेज की भावना नहीं, परचेज की शर्त नहीं। जो जितना खरीद सकेगा उतना उसको मिलेगा, यह गलत चीज है। ये अर्थशास्त्र आज चल रहा है, वो खादी में नहीं आया है। तो बापू ने जब ये विधायक संस्थाएं बनाई, किस लिए बनाई? कुमारप्पा ने उस पर नोट लिखी थी, और वो नोट सर्वोदय के सम्मेलन में आने वाली थी, लेकिन उसके एक रोज पहले ही बापू को गोली मार दी गई, तो वो नहीं रहे। लेकिन उसमें वो क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि आगे आने वाले समाज का स्वरूप क्या होगा। ये कहां देखो? तो मेरी रचनात्मक संस्थाओं को देखो। धरती आसमान की तरफ कितनी ऊंची उठ सकती है, किसको देखो? एवरेस्ट को देखो, हिमालय की एवरेस्ट चोटी को देखो, तो पता चल जाएगा कि आसमान की तरफ धरती कितनी उठ सकती है। मेरे राम राज्य का रूप किस प्रकार का होगा, कुछ इसकी झांकी हम कहीं देख सकते हैं तो मेरी विधायक संस्थाओं को दे। आज हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे राम राज्य का स्वरूप कैसा नहीं होगा, तो मैं कहूंगा हम बापू की विधायक संस्थाओं को दे। जहां काम में ईमान नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है, ऐसी संस्थाएं अगर देखनी है तो गांधी की संस्थाएं देखो। ये आज उनका रूप हो गया है। आज तो स्टैंडर्ड क्या समझा जाता है कि हमारे दफ्तरों में उतनी ही एफिशिएंसी है जितनी सरकार के दफ्तर में, जहां एफिशिएंसी शून्य है। आज थर्मामीटर सरकार है, पहले सरकार नहीं हमारी रचनात्मक संस्थाएं थी, लेकिन अब तो थर्मामीटर में कोई टेम्परेचर रहने लगा तो कोई नाप नहीं रह गया है, कोई पैमाना नहीं रह गया है। यह दूसरी चीज थी खादी के संस्थाओं में। खादी की संस्थाओं से मेरा मतलब है सारी विधायक संस्थाएं, उसमें खादी मुख्य है। तीसरी चीज यह थी कि इसमें सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होगी। कोई काम करता है या नहीं, इसके लिए इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। अगर जरूरत रहेगी तो इसकी रहेगी कि भाई जरा इतना काम मत कर, कुछ कम कर। यह कहने वालों की जरूरत रहेगी, निगरानी की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हमारे देश का मजदूर होता है, मेरे मकान पर अगर मजदूर काम कर रहा है तो लगातार निगरानी रखनी पड़ती है, नहीं तो दिन में 50 बार तम्बाकू ही पीने जाता है। तो जैसे दूसरे दफ्तरों में लंच आवर होता है, उसमें और हमारी खादी संस्थाओं के लंच आवर में कोई फर्क नहीं। लंच आवर जितना बड़ा हो उतना अच्छा ही है, और काम पर आते हुए घड़ी कुछ पीछे हो और जाते वक्त कुछ आगे हो तो अच्छा ही है। ये सिर्फ कर्तव्य निष्ठा ही नहीं है, इतना नहीं है, रुचि नहीं है काम जरा, इंटरेस्ट नहीं है। और जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उस काम का नाम बेगार है। मजदूरी उस काम का नाम है जो अपना काम नहीं है। पैसे के लिए जो काम किया जाता है उसमें स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है। स्कूल मास्टर ट्यूशन के लिए आता है तो जिस लड़के को ट्यूशन देना है उसको कम से कम समय में ट्यूशन देकर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन की फीस लेगा। लेकिन अपने बेटे को अगर पढ़ाना है तो कोई हड़ताल होगी। जो तनख्वाह के लिए पढ़ाता है वो स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वो दूसरे का काम है। जो अपने ही बेटे को पढ़ाता है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना काम है। तो ये गोविंद राव ने कहा ना कि ये किसी का अपना काम नहीं है, उसकी कसौटी यह है। जिस काम में स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, वो काम अपना नहीं है, दूसरे का है। वो पैसे के लिए काम हम करते हैं, दाम के लिए काम करते हैं। इससे, इस धरातल से, इस स्तर से खादी को उठाना होगा, नहीं तो यह समस्या अब हल होने वाली नहीं। इसके बाद एक चीज और है। हमारे देश में आज जो क्राइसिस है, जिसे संकट कहते हैं परिस्थिति में, वो संकट है परस्पर ईमान का, विश्वास का संकट है। विनोबा ने हमको, वो ऋषि है आज विनोबा, इसलिए एक एक शब्द में बहुत से संकेत मंत्र हमको दे देता है। तो उसने वेदांत, विज्ञान और विश्वास, तीन हमको शब्द दे दिए, वॉचवर्ड्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, सांकेतिक शब्द। हमारी किसी संस्था में अब परस्पर विश्वास नहीं रह गया है, एक दूसरे का भरोसा नहीं। नतीजा यह है कि हड़तालें भी होती हैं तो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, अपनी मर्जी से नहीं होती, लोगों को काम पर जाने से रोकना पड़ता है, टिकेटिंग ही नहीं पीटना भी पड़ता है, उनको डराना पड़ता है, एक आतंक का वातावरण पैदा करना पड़ता है जिससे वो काम पर न जा सके। तो मजदूरों में, काम करने वालों में भी आपस में विश्वास नहीं, मजदूर मालिक में आपस में विश्वास नहीं, मालिक मालिक में आपस में विश्वास नहीं, तो कैसे कोई काम आगे बढ़ सकता है। ये पूरे देश के लिए आप सोचिए, केवल अपने लिए नहीं, केवल खादी के लिए नहीं। मित्रों, ये कुछ संकेत थे जो संकेत बापू के मन में थे, इसलिए बापू ने इन संस्थाओं को क्रांति की प्रक्रिया के प्रतीक माने थे। बापू की विधायक क्रांति के साधन ये सारी संस्थाएं थी, जितनी संस्थाएं उन्होंने कायम की। और शुरू कहां से किया वो भी आप देखिए, पुनः संस्करण जब कराया तब ये कहा कि कम से कम 4 आने वेतन मिलना चाहिए, वो उस जमाने की बात है जब 4 आने की कुछ कीमत थी। लोगों ने कहा खादी महंगी होगी, तो बापू ने कहा कि जो काटता है उसको भूखा रखकर मुझे खादी सस्ती नहीं करनी। ये इसलिए कह सके वो कि वो स्वयं तो मजदूरी नहीं करते थे, खादी खरीदते भी नहीं थे, काटते थे। आज क्या होगा, काटने वाले को अगर ज्यादा मजदूरी आप देंगे तो खादी महंगी होगी, कम बिकेगी, कम बिकेगी तो बाबू लोगों की तनख्वाहें कम होंगी। इसलिए आवश्यक यह होगा कि खादी को सस्ता बेचने के लिए या तो सरकार से सहायता लो या फिर मुनाफाखोरी करो, एक्सप्लॉइट करो कंज्यूमर को। इस नीति के सिवा अब ये काम चलेगा नहीं। तो इसका नाम बापू ने अंत्योदय रखा था। अंत्योदय से मतलब ऊपर वाले की तरफ मत देखो, नीचे वाले की तरफ देखो। हर आदमी ऊपर वाले को अपने स्तर पर लाना चाहता है लेकिन नीचे वाले को अपने स्तर पर नहीं लाना चाहता। नीचे वाले को मेरे स्तर पर लाना है ये विचार किसी के मन में नहीं है, इसलिए यह सारा झगड़ा होता है। हर एक अपने से ऊंचे वाले को देखता है, ऊंचे वाले तो मुट्ठी भरे ही रहते हैं, ऊंचे वाले थोड़े नहीं रहेंगे तो वो ऊंचे ही नहीं हो सकते, वो ऊंचे हो ही नहीं सकेंगे। बिरला टाटा अगर सारे मुंबई शहर में फैल जाएंगे तो बिरला टाटा रहेंगे ही नहीं। तो यह है तो आरोहण, ऊपर को जाना है, लेकिन ऊपर को जाने में नीचे वाले को साथ लेकर जाना है, ये विचार आना चाहिए। ये विचार बापू की रचनात्मक संस्थाओं में था। मित्रों, ये कुछ बुनियादी विचार हैं जिन विचारों का प्रतीक खादी थी, वो आज नहीं रह गई है। फिर भी खादी पहनने में मुझे दिलचस्पी है, और वो इसलिए है कि आज भी खादी इतने गरीबों को काम दे रही, उनका शोषण होता है फिर भी काम इतने गरीबों को दे रही है, और दूसरों की अपेक्षा शोषण कम है। अब इसकी बेसिस को, इसकी बुनियादों को नहीं बदलेंगे तो खादी नहीं चलने वाली है। एक दिशा विनोबा ने, बापू ने अब बतलाई, जिसका उल्लेख गोविंद राव ने किया है, कि वस्त्र स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको बीच की बात बता रहा हूं, और बीच की बात यह बता रहा हूं कि इसमें से रिलेशनशिप बदलनी चाहिए। मालिक मजदूर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता अब खादी में नहीं रहना चाहिए। जितनी खादी व्यापारी खादी है उसमें कम से कम यह हो जाना चाहिए, और जो कतैया है, काटने वाला है, उसका भी स्थान आपके साथ होना चाहिए। कम से कम खादी की संस्थाएं तो करें, तो कारखानेदारों से हम कह सकेंगे ट्रस्टीशिप क्या है खादी को, देखो। आज वो हमसे पूछता है कि ट्रस्टीशिप कहां देखें, हम कहते हैं भाई तुम ही करो, कम से कम खादी को मत देखो, क्योंकि उसकी तरफ हम इशारा करेंगे, उंगली दिखाएंगे, तो तुम कहोगे कि तुम्हारा नहीं कर सका है, खादी वाला नहीं कर सका है, तुम हमसे क्या कह रहे हो। तो ये सबसे पहली चीज आज मैं कहता हूं जिसकी तरफ हमको कदम बढ़ाना चाहिए। आज होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सबसे ये कहा है, विद्यार्थियों से ये कहा कि यूनिवर्सिटी तुमको सौंप देनी चाहिए। ये फिजूल खर्ची करेंगे, सब काम बिगाड़ देंगे। आज कौन सा सुधरा हुआ है, आज फिजूल खर्ची कौन सी नहीं, जितना हमने बिगाड़ा है इससे ज्यादा हमारे बेटे बेटियां नहीं बिगाड़ने वाली है, उनमें शक्ति नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी इनको सौंप दो, इन लड़कों को, तब इनको, इनके होश ठिकाने आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। जब यही पैसा लाने वाले होंगे और यही तनख्वाह पाने वाले होंगे, तब उनकी समझ में आएगा, तब ट्रेड यूनियनिज्म का अंत हो जाएगा, तब हड़तालें बंद हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन के हड़ताल का मतलब होगा उतनी आमदनी कम। इस रिलेशनशिप का हमारी संस्थाओं में से अंत हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए, जो लगातार कम हो रही। खादी संस्थाओं का विश्वास कम हो रहा है, यह क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। तीसरी चीज, काम में इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ चौथी चीज भी है जो मैं कह रहा हूं, ऑडिट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो किसी खादी संस्था का और किसी विधायक संस्था के हिसाबों का ही ठिकाना नहीं। जितना कर्जा लिया गया है वो कहाँ गया इसका भी पता नहीं। तो ये तो इलेक्शन में जो होता है वो ही खादी में होता है, वो सब जगह होता है। ऑडिट की जरूरत क्यों है कि हिसाब सही रखा गया है कि नहीं, इसी के लिए है ना। तो हिसाब का शास्त्र जो सीख लेता है वो इतना होशियार होता है कि ऑडिटर को चकमा दे सकता है। उसमें से कोई ऑनेस्टी नहीं बढ़ी है ऑडिट में से। और पांचवी चीज मैं आप लोगों से निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप जो कातने वाला है उसको अधिक से अधिक दें और इस कोशिश में रहें कि खादी खरीदने वाले को सस्ती से सस्ती मिले। दूसरे कपड़े से महंगी होगी मैं जानता हूं, लेकिन जितनी सस्ती उसको दी जा सकती है ये आपका इंटरेस्ट हो, इसमें आपको अपना पेट काटना पड़े ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको अपना विलास काटना पड़े, जिसे लक्जरी कहते हैं वो काटनी पड़े, तो उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। मैं ऑस्टेरिटी की बात नहीं कह रहा हूं, आवश्यकताएं आपकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड हो गया है लाइफ का, जिस स्टैंडर्ड को मैं गलत स्टैंडर्ड मानता हूं, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इसका नाम है इकोनॉमिक्स में। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब आपके पास कितनी मोटरें हैं, तीन मोटरें हैं। तीन मोटरें किस लिए रखते हैं, सीट कितनी है आपकी, तो एक ही सीट है। एक वक्त एक मोटर की एक ही सीट पर बैठता हूं, फिर तीन तीन मोटरें क्यों रखते हैं, शान के लिए रखते हैं। आपके घर में कितनी कुर्सियां, 50 कुर्सियां हैं, इनमें से खाली कितनी रहती हैं, 45। कितने कमरे हैं, 10 कमरे हैं। इन ये किस काम के हैं, मैं सवेरे एक कमरे में बैठता हूँ, दोपहर में दूसरे में बैठता हूँ, तीसरे में अध्ययन के लिए तीसरे में बैठता हूँ, पूजा के लिए चौथे में बैठता हूँ, और फिर एक कमरा रह जाता है तो बैठने के लिए वक्त ही नहीं रहता। ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कहलाता है। ये हम समाज में कहीं नहीं रहने देना चाहते, लेकिन इसका अगर अंत करना है तो जिन संस्थाओं को हम प्रतीक के रूप में रखना चाहते हैं उन संस्थाओं में तो यह नहीं होना चाहिए। पूरा भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा कपड़ा मिले, सवारी में बैठने की सहूलियत हो, शिक्षण मिले, उपचार मिले, यह सब आवश्यक है। लेकिन ये सारे देश में मिले सबको, इसके लिए कुछ करना होगा ना, सबको मिलकर। आज हम कहते हैं कि तुम दो, तो उसका उपाय मैंने सुझाया कि हम देने वाले और वो लेने वाला, ये रिश्ता समाप्त होना चाहिए। भाई तू ही लेने वाला, तू ही देने वाला। ये एसेट्स हैं, इतनी संपत्ति है, अब इसमें से जो